नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत के खास अध्याय पर बात करने वाले हैं।
जी।
अध्याय का नाम है दिए गए कार्यक्रमों का प्राण प्रण से निर्वाह। इसमें पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के वो अनुभव साझा किए हैं जहां उन्होंने अपने मार्गदर्शक सत्ता मतलब एक अदृश्य शक्ति द्वारा सौंपे गए कामों को पूरी निष्ठा से निभाया।
बिल्कुल, और ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में जीवन जीने की मतलब एक गहरी सीख देता है।
हाँ,
कि कैसे मजबूत इरादे और अंदर की आवाज से मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य पर टिका रहा जा सकता है।
तो चलिए इसी कहानी से वो मुख्य बातें समझने की कोशिश करते हैं जो शायद हम सबके काम आए। शुरुआत में ही पूज्य गुरुदेव को उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने तीन बड़े काम सौंपे थे, वो क्या थे और उनमें कुछ खास बात की क्या?
हाँ, ये तीन जिम्मेदारियां एक तरह से उनके जीवन की नींव बनी। पहला था गायत्री महापुरुष चरण, मतलब एक विशेष मंत्र का करोड़ों बार जाप करना था, पूरे नियम और अनुशासन के साथ 24 साल तक।
24 साल?
जी, 24 साल, और साथ ही अखंड दीपक जलाए रखना था जो कभी बुझे नहीं। दूसरा काम था लोगों के भले के लिए साहित्य लिखना।
अच्छा।
जिसके लिए जाहिर है बहुत स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ना और लोगों से मिलना जुलना भी जरूरी था। और तीसरा, भारत की आजादी की लड़ाई में एक स्वयंसेवक सैनिक बनना।
ये तो बड़े अलग अलग काम लग रहे हैं, मतलब एक तरफ गहरी एकांत साधना, दूसरी तरफ लोगों से मिलना जुलना, लिखना, और फिर सक्रिय राजनीति, संघर्ष, ये सब एक साथ कैसे?
सही कहा आपने, यही तो इस कहानी की खास बात है, एक गहरी सीख कि जब जीवन में ऐसे कर्तव्य आए जो ऊपर से बिल्कुल अलग लगें, विरोधी लगें,
हाँ,
तो एक ऊंचा मकसद जैसे यहाँ गुरु की आज्ञा और लोगों का भला था, वो इन्हें एक धागे में पिरो सकता है। पूज्य गुरुदेव खुद लिखते हैं कि ये संतुलन उनकी अपनी होशियारी से नहीं हुआ।
अच्छा।
हाँ, वो कहते हैं कि ये उसी मार्गदर्शक सत्ता की कृपा थी जिसने कामों में टकराव नहीं होने दिया।
लेकिन ऐसे रास्ते पर चलना आसान तो नहीं रहा होगा, विरोध तो हुआ होगा।
बिल्कुल, बहुत हुआ। सबसे पहले तो परिवार और जो करीबी रिश्तेदार थे उन्हीं लोगों ने विरोध किया।
अच्छा।
उन्हें समझाया गया कि भाई सामान्य गृहस्थ जीवन जियो, कमाओ खाओ, ये साधना और देश सेवा वगैरह में पढ़ोगे तो जीवन में मुश्किलें आएंगी, अस्थिरता आएगी। यहाँ वो साफ दिखता है दुनिया के सुख प्रेम मार्ग और आत्मा की उन्नति या कर्तव्य श्रेय मार्ग का संघर्ष।
पर सिर्फ ये कह देने से कि भगवान की प्रेरणाएं, घर वालों का या समाज का दबाव कम तो नहीं हो गया होगा, कैसे संभाला उन्होंने ये सब?
ज्यादातर तो वो चुप रहे और अपने निश्चय पर टिके रहे, लेकिन हाँ, जब स्वतंत्रता संग्राम में जाने का फैसला किया, खासकर नमक सत्याग्रह में, तब तो विरोध बहुत ही ज्यादा बढ़ गया।
तब क्या हुआ?
तब तो घर से निकालने की बातें हुई, लाखों की जो पुश्तैनी जायदाद थी उससे बेदखल करने की धमकी मिली, यहाँ तक कि शारीरिक चोट पहुंचाने की भी धमकियां मिली।
अरे बाप रे।
हाँ, पर तब उनकी अंदर की शक्ति काम आई, उन्होंने प्रहलाद, ध्रुव, मीरा जैसे भक्तों को, शहीदों को याद किया और अपनी आत्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखा। वो सारी रुकावटों को पार करके छिपते छिपाते तय जगह पहुंचे और जेल भी गए। ये दिखाता है कि बाहर का दबाव चाहे कितना भी हो, अगर अंदर संकल्प साफ हो, आदर्शों पर भरोसा हो, तो इंसान को बल मिलता है।
क्या उनके बचपन में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस हिम्मत की नींव डाली हो?
हाँ, वो एक घटना बताते हैं। बचपन में जब समाज में छुआछूत बहुत माना जाता था, उन्होंने इसकी परवाह किए बिना एक बीमार मेहतरानी की सेवा की थी।
अच्छा, बचपन में?
जी, और इस वजह से उन्हें जाति से, घर से कुछ समय के लिए बाहर भी कर दिया गया था, पर वो पीछे नहीं हटे। इस अनुभव ने, आप कह सकती हैं, बचपन में ही उनके आत्मबल को मजबूत कर दिया था।
और जेल जाने के अनुभव कैसे रहे उनके लिए?
वो भी एक तरह की ट्रेनिंग ही साबित हुए। स्वतंत्रता संग्राम में बार बार जेल जाना पड़ा, वहां उन्हें हर तरह के पुरुषों से मिलने का मौका मिला, लोगों से कैसे बात करें, कैसे जुड़ें, ये कला सीखी, और एक स्वयंसेवक में जो विनम्रता होनी चाहिए वो गुण विकसित हुआ। आसनसोल जेल में ही उनकी मुलाकात महामना मालवीय जी से हुई, और वहीं उन्हें वो मशहूर सूत्र मिला, हर पुरुष से एक पैसा और हर स्त्री से एक मुट्ठी अनाज का सहयोग लेना।
हाँ, ये तो बहुत सुना है
जी, और यही सूत्र बाद में उनके बड़े बड़े अभियानों का आर्थिक आधार बना। कितना सरल लगता है, पर लोगों की शक्ति को जोड़ने का कितना अद्भुत तरीका था ये।
और इन सब भागदौड़ संघर्ष के बीच उनकी वो 24 साल की साधना और रोज का स्वाध्याय, वो कैसे चलता रहा? ये तो कमाल की बात है।
हाँ, ये उनकी लगन और एकाग्रता का सबूत है। सोचिए, 24 साल तक रोज 66 माला जाप, वो दीपक जो कभी बुझना नहीं चाहिए, और साथ में इतना गहरा अध्ययन, सफर करते हुए भी रोज लगभग 80 पेज पढ़ लेना,
अविश्वसनीय।
वो इसे गायत्री माह की साधना और उस दैवी कृपा का ही फल मानते थे। वो कहते थे कि मनोरंजन के लिए या फालतू जानकारी के लिए उन्होंने कभी एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, सिर्फ वही ज्ञान लिया जो काम का हो, और वो जरूरत पड़ने पर अपने आप याद आ जाता था। ये फोकस एकाग्रता की ताकत है।
पूज्य गुरुदेव ये भी बताते हैं कि उनके गुरु ने उन्हें समझाया था कि ये सारे अनुभव, खासकर आजादी की लड़ाई की मुश्किलें, असल में उन्हें भविष्य के बड़े कामों के लिए तैयार कर रही थीं।
हाँ बिल्कुल, इनके जरिए वो जीवन के 4 जरूरी सबक सीख रहे थे, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। और साथ ही वो उस समय का युग धर्म भी निभा रहे थे, मतलब देश की आजादी के लिए लड़ना उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी।
और फिर जब देश आजाद हो गया तब उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया।
हाँ, यही खास बात है, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को जो पेंशन मिलती है वो तक लेने से मना कर दिया।
अच्छा
जी, ये दिखाता है कि उनका काम पूरी तरह निस्वार्थ सेवा थी, अपने गुरु के आदेश के प्रति पूरा समर्पण था। उनका लक्ष्य कोई पद पाना नहीं बल्कि समाज का नैतिक और बौद्धिक उत्थान करना था।
तो पूज्य गुरुदेव के जीवन का ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि अगर एक साफ लक्ष्य हो, अटूट विश्वास हो और अपनी आत्मा की आवाज पर चलने की हिम्मत हो, तो बड़ी से बड़ी रुकावटों को पार किया जा सकता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया जा सकता है।
निश्चित रूप से, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के समय में हमारे लिए युग धर्म क्या है, मतलब समय की सबसे बड़ी पुकार क्या है।
हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है।
हाँ, क्या हम अपने जीवन के जरूरी कर्तव्यों या संकल्पों को पहचान भी पा रहे हैं, और क्या हम उन्हें पूरा करने के लिए वैसी ही दृढ़ता, वैसा ही समर्पण दिखाने को तैयार हैं जैसा पूज्य गुरुदेव ने इतनी मुश्किलों के बाद भी दिखाया। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।